Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
كهو لا إله إلا الله
رسول الله
نہیں کوئی معبود
اللہ کے سوا
اور سیدنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے سچے رسول ہیں.
ایمان لائے ہم
اللہ پر
اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر
قیامت کے دن پر
اور تقدیر پر
بھلا ہو یا برا
سب اللہ کی طرف سے ہے
توبہ کی ہم نے
کفر سے شرک سے
بدعت سے
نماز چھوڑنے سے
چوری کرنے سے
زنا کرنے سے
پرایا مال ناحق کھانے سے
کسی پر بہتان باندھنے سے
کسی کی غیبت کرنے سے
اور ہر گناہ سے
چھوٹا ہو یا بڑا
اور عہد کیا ہم نے
انشاءاللہ
کوئی گناہ نہیں کریں گے
اور اگر ہو گیا
تو فوراً توبہ کریں گے
یا اللہ
تو ہماری توبہ قبول فرما
ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما
ہمیں توفیق عطا فرما
اپنی رضا مندی کی
اور اپنے پاک رسول کی تابعداری کی
اور اپنے پاک رسول کی تابعداری کی۔
بس دیکھو یہ ہو گئے بیت۔ اب جو باتیں کہوں ان کو دھیان سے سنو۔ بیت ہونے کا خلاصہ اور مطلب دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے میں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے میں۔ آج تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی کوتاہی اور غفلت نہیں کریں گے، اس کا عہد و پیمان اور وعدہ۔ گویا یہ بیت آپ کی پچھلی یعنی گزری ہوئی زندگی کے حق میں توبہ ہے، اور آنے والی زندگی کے حق میں ایک طرح کا معاہدہ، وعدہ اور ایگریمنٹ ہے۔ توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، آدمی گناہ کو چھوڑ دے۔ گناہ پر قائم اور باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو، اب تک جو گناہ ہوئے اس پر دل میں ندامت اور پچھتاوا ہو کہ ہائے کس بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی۔ نمبر تین، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ یہ تینوں شرطیں تو ہر گناہ سے توبہ میں ضروری ہیں، اور اگر کوئی گناہ ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یا بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوا، تو پھر وہ حق بھی ادا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں ایک تو ہے نماز۔ آدمی جب سے بالغ ہوتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ غسل کی حاجت ہو یا 15 سال کی عمر پوری ہو تو آدمی بالغ کہلاتا ہے۔ آپ حضرات بھی جب سے بالغ ہوئے آپ پر نماز فرض ہو چکی۔ اب اگر اس وقت سے لے کر آج تک تمام نمازیں برابر پابندی سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نماز چھوٹی نہیں الحمدللہ، یا چھوٹی تھی لیکن قضا کر لی تو بھی بہت اچھا، اور اگر چھوٹی ہے اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد تنہائی میں بیٹھو، بیٹھ کر غور کرو، سوچو، اندازہ لگاؤ کہ آج تک ہماری کتنی نمازیں چھوٹی۔ ابھی بیعت ہو چکنے کے بعد آپ کو ایک کتابچہ بکلیٹ دیں گے، اس کے اندر سوچنے، غور کرنے، اندازہ لگانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، وہ پہلے پڑھ لینا اور اس کے بعد بیٹھ کر کے سوچ کر اندازہ لگانا۔ اندازہ لگا کر جو طے کرو اس کو ڈائری میں یا کاغذ پر نوٹ کر لو، اور آج ہی سے اس کی قضا کرنا شروع کر دو۔ قضا سے متعلق مسئلہ معلوم نہ ہو تو مفتیوں سے پوچھ لینا۔ اسی طرح رمضان کے روزے، بالغ ہونے کے بعد جتنے بھی رمضان کے مہینے آئے ان کے روزے بھی آپ پر فرض ہو چکے، اور وہ بھی اگر برابر رکھتے چلے آ رہے ہیں، آج تک رمضان کا کوئی روزہ آپ کا چھوٹا نہیں الحمدللہ، یا چھوٹا تھا اور قضا کر لی تو بھی بہت اچھا، اور اگر چھوٹا ہے اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو یہاں سے ہوئی نماز کے لیے جو جہاں آپ نے سوچا۔ نمبر دو پر روزوں کے متعلق بھی سوچ لو کہ آج تک، غور کر لو، اندازہ لگا لو کہ آج تک ہمارے رمضان کے کتنے روزے چھوٹے، اس کا بھی غور کرنے اور اندازہ لگانے کا طریقہ اسی کتابچے میں، اسی بکلیٹ میں ہے۔ اور اگر اللہ نے مال و دولت دی جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوئی، قربانی واجب ہوئی، صدقۃ الفطر واجب ہوا، اور یہ چیزیں بھی برابر پابندی سے دیتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور اگر اس میں بھی غفلت ہوئی ہے تو کسی ماہر مفتی کے پاس جا کر اپنی مالی پوزیشن اس کو بتا دو کہ اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا نقد روپیہ اور اتنا تجارت کا سامان اتنے سالوں سے میرے پاس ہے اور آج تک میں نے زکوٰۃ دی نہیں، قربانی کی نہیں، میں کیا کروں۔ وہ مفتی آپ کو جو بتاوے وہ کر لینا۔ حج اگر فرض ہو چکا ہے اور نہیں کیا ہے اب تک تو وہ بھی کر لو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہوئے۔ بندوں کے حقوق دو طرح کے ہیں، جانی اور مالی۔ जानी का मतलब यह है कि हमने किसी को मारा, पीटा, गालियाँ दी, बुरा भला कहा, तोहमत लगाई, सताया, हमारी ज़ात से किसी को जिस्मानी या जहनी, शारीरिक या मानसिक तकलीफ़ पहुँची। जिसको भी तकलीफ़ पहुँची, जब तक कि वो खुद माफ़ न करे वहाँ तक माफ़ होता नहीं। हम अल्लाह तबारक व ताला के सामने कितने ही रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला से अर्ज़ करें कि अल्लाह मैंने तो तेरे बंदों को बहुत सताया है, मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी जवाब मिल चुका है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको बतला दिया कि बंदों का हक अल्लाह माफ़ करते नहीं हैं, बंदों से ही माफ़ करवाना पड़ता है। इसी तरह माली हुकूक, किसी के पास से पैसे लिए, कर्ज के तौर पर लिए, चुरा लिए, छीन लिए, पार्टनर था, चुपके चुपके लेते रहे, उसको पता नहीं चलने दिया, भाई का, बहन का, पड़ोसी का कोई माली हक था जो अदा न किया। बहुत से लोग माँ बाप के इंतकाल के बाद सब जायदाद लेकर बैठ जाते हैं, भाई बहनों का हिस्सा नहीं देते, कोई चीज़ किसी की ले ली वापस नहीं की, कोई चीज़ किसी की तोड़ दी उसकी कीमत अदा नहीं की। आमतौर पर तलबा आपस में जब दुश्मनावट होती है ना, तो चुपके से किसी की कापी लेके फेंक देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, चप्पल वप्पल लेके काट कूट करके छुपा देंगे, खुश होते हैं कि हमने उसको नुकसान पहुंचाया। खुश क्या हो, ये तो बहुत बड़ा बोझ आपने अपने सर पर लिया है, वो जब तक कि अब इसको आप मामला साफ नहीं करेंगे वहाँ तक आपकी जिम्मेदारी भरी नहीं होगी। मतलब ये है कि कोई चीज़ किसी की ली थी वापस नहीं की, कोई चीज़ तोड़ दी थी तो उसकी कीमत अदा करनी चाहिए, वह नहीं की। तो ये सब जब तक के करोगे नहीं वहाँ तक जो है ये मामला साफ होगा नहीं। इसलिए आज तक जितने लोगों के साथ आपके ताल्लुकात रहे, उठना बैठना रहा, मिलना जुलना रहा, इसलिए कि आम तौर पर किसी का कोई जानी या माली हक उसी का होता है जिसके साथ हमारा उठना बैठना मिलना जुलना हो। अजनबियों के साथ जहाँ कभी कोई नौबत ही नहीं आई मिलने जुलने उठने बैठने की, वहाँ कोई जानी हक का या माली हक का सवाल पैदा नहीं होता। तो बहरहाल जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना और मिलना जुलना है वो चार तरह के हैं। एक तो हैं रिश्तेदार, उनमें हैं माँ बाप, भाई, बहने, चचा, खाला, फूफी, उनकी औलादें। आज तक जिन जिन रिश्तेदारों के साथ आपका उठना बैठना रहा, मिलना जुलना रहा, एक कागज़ लेकर उनके नाम लिखो। पहला ही नाम लिखो अब्बा का, इसलिए कि उनके साथ तो पहले ही दिन से वास्ता रहा। दूसरा अम्मी का, उसके बाद भाइयों बहनों का, उसके बाद जिन जिन रिश्तेदारों के साथ आपका मिलना जुलना उठना बैठना रहा उनके नाम लिखो। वो कितने होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरे वो लोग जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारा जो हल्का या अहबाब है। एक दूसरा कागज़ लो, उसमें आप अपने दोस्तों के नाम लिखो, जो अभी हैं वो भी, जो पहले थे अब दोस्ती नहीं रही, लेकिन एक ज़माना जब उनके साथ हम उठे बैठे मिले जुले उनका मामला रहा है, इसलिए उनका भी नाम लिखो। ये भी कितने होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये दूसरी लिस्ट हुई। तीसरे मोहल्ले और बस्ती के वो लोग जिनके साथ कोई दोस्ती तो नहीं है, रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन चूँकि वो मोहल्ले में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, इसलिए उनसे भी मिलने जुलने की नौबत आई थी, तो उनके भी नाम लिखो। वो भी 20, 25, 30, 50, 100, क्योंकि वो बस्ती का मामला है पूरे, इसलिए हो सकता है ज़्यादा हों। और चौथे वो लोग जो आप जिस मशगले में मशगूल हैं, जिस काम में, उसकी वजह से आपको उनसे वास्ता पड़ा। जैसे आप तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म हैं, तो ज़ाहिर आप फारसी अव्वल से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो फारसी अव्वल में आपके साथ जो तलबा जमात में थे, फारसी दौम में थे, सौम अरबी अव्वल में थे, अभी पंजुम ने दौरे तक आते आते मालूम नहीं कितने आपके क्लास फेल हुए। इसी तरह जिन जिन उस्तादों से आपने यहाँ रह करके पढ़ा उनसे वास्ता रहा, या मदरसे के क़याम के दौरान जिन मुलाजिमीन से, नौकरों से आपका वास्ता पड़ा, मुंतजिमीन से वास्ता पड़ा, ये सब, उन सब के नाम लिखो। ये चौथी लिस्ट लंबी हो जाएगी। पहली तीन लिस्टों के नाम तो 25-30, 25-30 तो तीनों के मिलाकर 100-150 हो जाएंगे, लेकिन ये तीसरी चौथी लिस्ट जो है उसमें हो सकता है 200-300-400 नाम आ जाएं, कुल मिलाकर 500 हैं मान लीजिए। तो ये है हमारी दुनिया। देखो दुनिया में करोड़ों आदमी बसते हैं, लाखों करोड़ों आदमी हैं, लेकिन हमारी दुनिया ये है जो कागज़ पर आ गई। अब इनको लेकर के बैठो, पहले कागज़ पर नाम है रिश्तेदारों के, उसमें पहला ही नाम है अब्बा का। देखो आज सोचो, आज तक मैंने अब्बा को इतनी तकलीफ़ें पहुँचाई, उनका दिल दुखाया, उनको सताया, उनकी नाफरमानियाँ की, वो याद आएगा, वो नोट करो। याद नहीं आता तो कम से कम इतना तो याद है कि उनको हमने तकलीफ़ें पहुँचाई है। मुख्तसर नोट, शॉर्ट नोट लिख दो कि मुझे उनसे इस सिलसिले में माफ़ी मांगनी है। दूसरा नाम अम्मी का, वहाँ भी इसी तरह का मामला है, उनको भी हमने बहुत सी तकलीफ़ें पहुँचाई, उनकी नाफरमानियाँ की, उनको सताया, वो भी नोट करो। फिर भाई बहनों के नाम हैं, भाई बहनों के साथ तो हमारे हमेशा झगड़े ही रहते हैं, घर में रहने के अंदर मार पिटाइयाँ होती है, गाली गलौज होती है, कभी माफ़ी मांगने की नौबत भी नहीं आती, बल्कि कोई कहवे कि भाई माफ़ी मांग लो, तुमने भाई को ऐसा किया, तो उसको जवाब क्या देते हैं, इससे क्या माफ़ी मांगने की, गोया उसको तो इस काबिल भी नहीं समझा जाता कि उससे माफ़ी मांगी जाए। बहरहाल ये भाई बहने जो रिश्तेदार, ये जो पहली लिस्ट में जितने भी नाम हैं उनके अंदर उनको ये करो। दूसरी लिस्ट दोस्तों की, उसमें आप 15 नाम हैं, 20 नाम हैं, अभी दो दोस्त 8-10 हैं, वो पहले थे वो, और पहला इनाम है भाई इसके साथ हमारे झगड़े हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, क्योंकि आमतौर पर दोस्ती होती है तो तब तो ठीक है, ज़रा फिर ज़रा ऊँच नीच हो जाती है तो फिर उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी को बदनाम करते हैं, उसी पर तोहमतें लगाते हैं, उसी को के मुतालिक गलत बातें चलाते हैं। ये सब किया था दोस्तों के साथ, ये सब ना, उसका हक तलफी हुई, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इसको नोट करो। इसी तरह तीसरी रिश्ते जो है मोहल्ले और बस्ती वालों की, वहाँ भी यही चौथी में जो आपके साथियों का है मामला, तो उन्हें हर एक के मुतालिक सोचो, इसको मेरी तरफ से क्या तकलीफ क्या हुआ, जो याद आवे नोट करो। इसी तरह फिर इन लिस्टों को दोबारा आपको चेक करना है माली हुकूक़ के लिए, इनका कोई माली मुतालबा मेरे ऊपर है। पहली लिस्ट रिश्तेदारों की, अब्बा का नाम है, अब्बा से कोई कर्ज तो नहीं लिया था, लेकिन आम तौर पर औलाद की आदत होती है चुपके से अब्बा की जेब में हाथ मार लेते हैं, समझा है कि नहीं, तो अभी अब्बा की जेब में से आपने चुपके से जो पैसे निकाले थे, जाहिर है वो तो चोरी थी, आप खुद भी समझ रहे थे, अब्बा की इजाज़त के बगैर लिया वो तो चोरी है, अब उनसे मामला साफ करना पड़ेगा। अब उनको मालूम हो तो वो माफ़ भी कर दें, उनको तो मालूम ही नहीं, इसलिए आप नोट करके उनको बताइए कि अब्बा फलां वक्त ऐसा हुआ था, उसमें शर्माने की बात नहीं है। शर्म में अगर कुछ किया नहीं, इसी तरह रहे यहाँ तक कि मौत आ गई या आपकी या उनकी, तो ये फिर ये केस जो है ना ट्रांसफ़र हो गया वहाँ आखिरत की कोर्ट में, अब तो यहाँ तो दोनों फरीक में से एक रहा नहीं, तो वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कल को क़यामत में मैदान हश्र में जब हिसाब किताब होगा वहाँ आपके नामे आमाल को फरिश्ते देखेंगे कि इसने अब्बा की जेब में से पैसे निकाले थे, तो वहाँ फरिश्ते अब्बा को पूछेंगे कि आपने ये इसने आपके बेटे ने पैसे निकाले थे, माफ़ कर देते हो? अब्बा कहेंगे ना मैं तो नहीं माफ़ करता। वहाँ आप अब्बा से यूँ कहें, अब्बा आप तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, मैं तो आपका बड़ा लाडला बेटा था। अब्बा कहेंगे बेटा सब दुनिया में, यहाँ तो मैं मुझे अपना हक चाहिए, बाप हो, माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, बीवी हो, भाई हो, बहन हो, कौन छोड़ेगा नहीं, एक पाई भी अगर बाकी है तो वसूल करेगा। इसीलिए कुरान कहता है यौम यफिरु अल-मर्उ मिन अखीहि वउम्मिहि वअबीहि वसाहिबतिहि वबनी लिकुल्लि इमरिन मिन्हुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, ये रिश्तेदारों ही को देख के आदमी भागेगा, ये कहीं मेरा कोई मुतालबा ना खड़ा कर दे, ये इसलिए दुनिया ही में ये मामला साफ किया है, हम आसानी है वरना फिर मामला मुश्किल। तो बहरहाल ये माली हुकूक जितने भी हैं, किसी के पास से, जिस दोस्त के पास से लिया था, दुकानदार के पास से लिया था, किसी का भी, या जैसा कि मैंने अभी कहा अपनी हिमाकत से, बेवकूफ़ी से साथी की कापी लेकर फाड़ के फेंक दी थी, उसके चप्पल फेंक दिए थे, अब ख्याल आया कि ये गलत हुआ, नोट करो उसको, ये सब नोट किया, दोनों बातें नोट कर ली जानी मानी हुकूक की। जब लिस्ट तैयार हो जाएगी, अब असल मरहला है, अब जो है जो असाबे हुकूक हैं उनके पास जाना है और जा कर के जानी हुकूक की माफ़ी मांगनी है। भाई आपको मैंने गाली दी थी, आपको सताया था, आप पर तोहमत लगाई थी, आपको बदनाम किया था, आपकी मैंने गीबत की थी, अल्लाह वास्ते मुझे माफ़ कर दो। ये तो ये खुद जब जाएंगे उसके हाथ पांव पकड़ेंगे तो अल्लाह ने इंसान का दिल ऐसा बनाया है कि दुश्मन भी अगर आवे खुद और माफ़ी मांगे तो आदमी का दिल पसीज जाता है और वो उसको माफ़ कर देता है। बहुत बहुत तो ये है कि वो जवाब में यूँ कहेगा कि मैंने भी आपको तकलीफ़ पहुँचाई थी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप कह दीजिए भाई तब तू माफ़ करता है, जब मैं कहे कुछ और बाकी रखूँगा मैंने भी माफ़ कर। मामला बहुत आसान, रुकावट है अपने नफ्स की। आदमी के अंदर जो नफ्स है ना उसकी अनानियत, वो उसको वहाँ जाने नहीं देगी। जब वक्त आएगा तो नफ्स यूँ कहेगा अच्छा उसके पास तुम जाओगे माफ़ी मांगोगे, ये तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती है, तुम्हारी बड़ी तोहीन है, तुम्हारी बड़ी इंसल्ट है। जाने देगा नहीं, इसी नफ्स ने गुनाह करवाए और यही नफ्स तौबा की राह में भी रुकावट डालेगा। बस उस वक्त आपको नफ्स के ऊपर खाक डाल करके उसकी बात माने बगैर जाना है, मामला बहुत आसान है। और माली हुकूक है वो अदा करो, वहाँ खाली ज़बानी माफ़ी से नहीं चलता। ये भाई तुम्हारे इतने मेरे ऊपर बाकी हैं लो और मैंने इस हक़ की अदायगी में जो ताखीर की वो माफ़ कर दो, तो उस ताखीर की माफ़ी मांगनी है। ये सब कर लोगे तो आपकी ये तौबा मुकम्मल होगी। अभी जो तौबा आपने की है वो तो खाली ज़बानी है, तकमील तौबा उसी का नाम है, ये तो खाली तौबा ज़बानी हो गई। तो जब ऐसा कर लोगे तो आज तक की आपकी ज़िंदगी का हिसाब किताब साफ़ हो जाएगा, गोया अब तक का आपका मामला क्लियर कट हो जाएगा। अब आपकी ज़िंदगी का वह एक नया बाब शुरू हो रहा है आइंदा के लिए। आइंदा के लिए आपको पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करनी है। रमज़ान का महीना आवे तो उसके रोज़े रखो। अल्लाह ताला ने माल और दौलत दी है या आइंदा अल्लाह दे तो उसकी ज़कात अदा करो, क़ुरबानी करो, सदक़तुल फ़ितर दो, और माली इस्तेताद हज की है तो हज करो। माली हुकूक जिनके होंगे बीवी बच्चों के माँ बाप के वो अदा करो। किसी को हमारी ज़ात से तकलीफ़ न पहुँचे, हमें ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है कि हमारी ज़ात से किसी अदना आदमी को भी तकलीफ़ पहुँचनी नहीं चाहिए, तो अपना हो, पराया हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, यहाँ तक के जानवर को भी तकलीफ़ पहुँचनी नहीं चाहिए। जानवर को बिला वजह तकलीफ़ पहुंचाने की शरीयत इजाज़त देती नहीं है। बहुतों की आदत होती है जा रहे हैं कुत्ता बेचारा एक कोने में बैठा हुआ है लेला लगे, भाई काहे को मारा, तुम्हारे पेट में क्या दर्द हुआ, अल्लाह की मखलूक थी, अल्लाह की ज़मीन पर बैठी हुई थी, तुम्हारा क्या बिगाड़ा। हाँ वो कुत्ता अगर आपको भौंकता है, आपके पीछे दौड़ता है काटने के लिए, तो शरीयत ने आपको अपना दिफा और डिफेंस करने की इजाज़त दी है, वरना बिला वजह उसको छेड़ने की इजाज़त नहीं है। तो मतलब ये है कि कोई भी हो किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाना ये हमारा शेवा नहीं है। कल के क़यामत में अल्लाह तबारक ताला जब इंसाफ करेंगे ना, तो हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बग़ैर सींग वाली बकरी को दुनिया में मारा था तो अल्लाह ताला उसका भी बदला दिलवाएंगे। कैसे दिलवाएंगे, सिंह दोनों को बुलाएंगे, सिंह वाली का सिंह निकाल देंगे, अल्लाह इस पर कुदरत रखते हैं, और बग़ैर सिंह वाली को सिंह बिठा कर कहेंगे तुम मार के बदला ले लो। जब ये मामला किसके साथ किया जाएगा, जानवरों के साथ, हालांकि इनके लिए शरीयत नहीं आई, शरीयत तो हमारे लिए आई है। तो उनको जब अल्लाह मियाँ ने नहीं छोड़ा तो मैंने और आपने अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचाई है तो क्या अल्लाह मियाँ हमको छोड़ेंगे, नहीं बदला दिलवाएंगे। और उनका बदला तो ये दिलवाया कि उसने मारा था तो इसको भी सिंह बिठा करके कहे मार के बदला ले, हमारा नहीं, हमारा ऐसा नहीं, हमने दुनिया में किसी को तमाचा मारा है ना, तो क़यामत करो तो अल्लाह ताला उसको यूँ नहीं कहेंगे कि इसको तमाचा मार के बदला ले ले। अगर ऐसा करें तो बहुत अच्छा, लेने भाई एक कहीं दो मार दे, हमारी नेकियाँ तो सलामत रहे, भले दो तमाचे खा लेंगे हम एक के बदले में, لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارا بدلہ نہیں, ہمارا بدلہ تو یوں دلوائیں گے کہ ہماری نیکیاں اس کو دے دیں گے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل کو قیامت کے روز پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا, لیکن کسی کو مارا تھا, کسی کو گالی دی تھی, کسی کا حق دبایا تھا, وہ سب اصحاب حقوق جو ہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے, اپنا حق مانگیں گے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے بھائی اس کی نیکیوں کے ذریعے سے اس کا حق ادا کرو. چنانچہ فرشتے, وہ جو لسٹ بنی تھی نہیں 500 کی, وہ اگر یہاں ہم نے صاف نہیں کیا تو وہاں تو جواب دینا ہی پڑے گا, تو وہاں وہی فرشتے نیکیاں اس کی دیں گے. دیتے 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 ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی, اور ابھی سب حقوق والوں کا حق ادا نہیں ہوا, ابھی تو 500 میں سے 200 کا حق ادا ہوا, ساری نیکیاں ختم, 300 ابھی باقی ہیں. باری تعالیٰ سے فرشتے پوچھیں گے, باری تعالیٰ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی اور ابھی حق والے باقی رہ گئے, اب کیا کریں؟ تو باری تعالیٰ فرمائیں گا, ایسا کرو کہ یہ جو باقی رہ گئے ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دو, اس کے نامہ اعمال میں. گویا نیکیاں دوسروں نے لے لی, گناہ دوسروں کے سر پہ پڑے, جہنم میں جانے کی نوبت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. یہ حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس کا خاص اہتمام کرو. ہم لوگ جو ہیں نا اپنی نیکیوں کو تو بہت دیکھتے ہیں, میں نے اتنی نمازیں پڑھی, اتنا قرآن پڑھا, اتنی تسبیحیں پڑھی, اور اتنا یوں کیا نہیں یوں کیا, نہ اس کو گالی دی, نہ اس کی غیبت کی, نہ اس کو تہمت لگائی, وہ ہم کو یاد رہتا نہیں ہے. بس وہ جمع کھاتا یاد رہتا ہے, ادھار کھاتا یاد نہیں رہتا. قیامت کے روز جب دونوں آئے گا نا سامنے, تب پتہ چلے گا کہ ہو ہمارے, ہم تو سمجھتے تھے بہت ساری نیکیاں ہیں سب ختم ہیں. اس لیے اس کا خاص اہتمام کرو. اللہ کے نیک بندے اس کی بڑی کوشش کرتے ہیں, ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ان کی نیکی دوسرے کے کھاتے میں چلی جائے, اپنی نیکیوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. خیر, تو بہرحال کوشش یہی ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور قرآن پاک کی تلاوت اگر آپ میں کوئی حافظ ہے تو وہ تین پارے, اب تین پارے کی ترتیب جو ہے اپنے حساب سے بنا لینا, پوچھ بھی سکتے ہو مجھ سے, میں بھی بتا دوں گا. اگر قرآن کچا ہے اور پکا ہے تو تین پارے ایک دو تین اس طرح ترتیب سے چلتا رہے, اور اگر کچا ہے تو اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پہلا پارا لیا, اس کو تین مرتبہ پڑھ لیا تو تین پارے بھی ہو گئے, دوسرے دن دوسرا پارا لیا اور وہ تین مرتبہ پڑھا, تو اس طرح ایک مہینے کے اندر یہ قرآن جو ہے تین مرتبہ ختم ہوگا. اور اگر زیادہ کچا ہے تو آدھا پارا لیا اور اس کو چھ مرتبہ پڑھا, پہلا آدھا پارا آج پڑھا چھ مرتبہ, دوسرا آدھا کل چھ مرتبہ, پھر دوسرے پارے کا پہلا آدھا, اس طرح دو مہینے میں قرآن پورا ہوگا. لیکن بارہ چھ مرتبہ دیکھ کر ہی پڑھو. پھر دوسرا جب شروع ہو ختم ہو کر نیا, تو اس وقت چھ مرتبہ اسی طرح, لیکن پانچ مرتبہ دیکھ کر اور ایک مرتبہ زبان, اس طرح دھیرے دھیرے ترتیب کرو گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جو ہے آپ کا قرآن پختہ ہو جائے گا, آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آسانی سے قرآن پڑھ پائیں گے. ایک حافظ کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے جو قرآن اس کے جو ہے دل و دماغ میں ایسا رچ بس جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ بکثرت قرآن کی تلاوت کرتا رہا. ویسے قرآن کی تلاوت سے اللہ کا قرب بھی بہت زیادہ نصیب ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے تسبیحات. تسبیحات میں ایک تو ہے تیسرا کلمہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اور درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ, یا جو درود آپ کو چھوٹا بڑا یاد ہو. اور تیسری چیز ہے استغفار. استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں, جو کلمہ آپ کو یاد ہو آپ کو آسان ہو, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الی اللہم اغفر لی وارحمنی ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ بہت اچھا, اللہم اغفر لی وارحمنی یا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس لیے کہ استغفر اللہ جو بولتے ہیں اس پر تو یہ گویا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں, اور بول رہے ہیں زبان سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں, اور دل ہمارا کہیں اور اٹکا ہوا ہے, گویا ہم زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے سامنے. اسی لیے پسند یہ کیا گیا, اللہم اغفر لی وارحمنی, مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی مانگی جا رہی ہے, اور قرآن کی دعا ہے یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ دونوں سجدے بہت اچھے ہیں. ویسے ان دو سجدوں کی بھی فضیلت حدیث میں بہت آئی ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ واقعتاً دل کی توجہ سے آدمی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے, ورنہ بزرگوں کا مقولہ ہے استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر, کہ ہمارا استغفار خود جو ہے بہت بڑے بہت زیادہ استغفار کا محتاج ہے. یعنی ہم زبان سے بول رہے ہیں استغفر اللہ, دل مارا نہیں کہاں لگا ہوا ہے, تو زبان بول رہی ہے دل میں تو کہیں ہے ہی نہیں, یہ نہیں. تو خیر بالا استغفار کا جو بھی صیغہ ہو, کچھ نہیں تو خالی استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے. تو یہ تین چیزیں ہوئی, تیسرا کلمہ, درود شریف اور استغفار. فضائل ذکر میں جن جن کلمات کی فضیلت آئی ہے تیسرے کلمے میں تقریباً وہ سب آ جاتے ہیں, اور درود شریف کی اپنی فضیلت ہے, فضائل درود میں دیکھ سکتے ہیں. اور استغفار آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹے بڑے گناہ تو آدمی سے ہو ہی جاتے ہیں, جیسے ہم صبح شام نہا دھو کے نکلتے ہیں باہر, شام کو واپس جب آئیں گے تو باہر جانے کی وجہ سے کپڑوں کے اوپر گرد و غبار لگتا ہی آ کر جھاڑ دیتے ہیں, اور ایک دو دن میں پھر دوبارہ اس کو بدل کر دوسرے کپڑے پہنتے ہیں. یہی حال دل کا بھی ہے, آدمی لوگوں سے ملتا جلتا ہے نکلتا ہے, اس میں گناہ ہو ہی جاتے ہیں. اس لیے اس دل کے دھونے کی اور اس کی صفائی کی کوشش جاری رہنی چاہیے, ورنہ پھر وہ کالا ہو جائے گا. خیر تو بہرحال یہ تین چیزیں ہوئی, اور یہ تینوں صبح بھی سو سو مرتبہ, شام کو بھی سو سو مرتبہ. صبح کی تسبیح اٹھو جب سے لے کر دن کے 11 بجے تک پوری کر سکتے ہو. 5 بجے اٹھے آج کل, 11 بجے تک 6 گھنٹے ملیں گے. اور شام کی تسبیح بھی اثر سے لے کر سونے تک, 5 بجے اثر, سو گئے 11 بجے تو وہاں بھی 6 گھنٹے. لیکن فجر میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت بڑا بابرکت ہے. حدیث پاک میں اس وقت میں ذکر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے, اس وقت پڑھ لو تو بہت اچھا آسان طریقہ ہے. نماز کے بعد اٹھو ہی مت, وہیں بیٹھے بیٹھے پورا کرو, اٹھے تو گئے. اس لیے کوشش ہی مزاج ایسا بناؤ, ایک ہمارا نفس اور شیطان جو ہے ہمارا مزاج یہ بناتا ہے کہ دوسرا سلام ابھی تو پورا پھرا نہیں کہ اٹھ کے بھاگتے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے کے قابل ہوتے نہیں ہیں. تو بہرحال مسجد میں بیٹھنے پہلے بھی جاؤ تو پہلے بھی جا کر کے فارغ مت بیٹھو, سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر جو ہے قرآن کی تلاوت کرو, تسبیح پڑھو, اسی میں وہ آسانی سے ہو جائے گا. طلبہ فریاد کرتے ہیں وقت نہیں ملتا, حالانکہ وہ اگر اپنا وقت دیکھے تو کتنا وقت ضائع اور برباد ہوتا ہے. مسجد میں جاتے ہیں, نماز سے پہلے جاتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, شور کی آواز آتی ہے, آپ اپنے پڑھنے میں مشغول رہیں گے تو آسانی سے سب کچھ ہو جاتا ہے. خیر تو بہرحال یہ صبح کی اور شام کی تسبیح جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک پوری کر لیں, تفریح میں بھی جاویں تو چلتے پھرتے اپنی تسبیح پوری کر سکتے ہیں. یہ تسبیح بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور 40 درود چھپے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے. 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرو. اس وقت مقرر کر دو, ہر چیز کا وقت, بے وقت کا نہیں. فلاں یہ کام, جیسے یہ 40 درود ہے میں فجر کے بعد یا فجر سے پہلے پڑھوں گا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس مقررہ وقت پر آپ کو پڑھنا یاد بھی آئے گا, آسان بھی رہے گا. ورنہ آج صبح پڑھا, کل دوپہر کو پڑھا, پرسوں شام کو پڑھا, ترسوں چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہوگا. اور حزب الاعظم, آپ سب جانتے ہیں حزب الاعظم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا کا جو طریقہ بتلایا, دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے حاصل کرنے کا طریقہ حضور نے دعا کے ذریعے سے بتلایا نہ ہو. دنیا آخرت کی کوئی تکلیف مصیبت برائی ایسی نہیں جس سے پناہ مانگنے کا طریقہ نہ بتلایا ہو. یہ ساری دعائیں मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने एक जगह जमा कर दी और ज़रा ज़खीम हो गई। एक दिन में पढ़ना उसका बज़ाहिर मुश्किल था, तो उन्होंने आसानी के लिए उसके सात हिस्से कर दिए ताकि एक हफ्ते में आसानी से उसको आप पूरे करते रहें। ये तर्जमे वाली भी मिलती है और आप तो पढ़े लिखे हैं, अगर फिर भी तर्जमे वाली रखने की किसी दुआ का मतलब समझ में ना आए तो नीचे देख लिया जाए, दुआ को दुआ के तौर पर, ये नहीं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया बोल रहे हैं और दिल कहाँ है, नहीं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन बोलते वक्त दिल में तलब भी यही हो कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाजे। तो बहरहाल इस तरह ये जो है हिजबुल आज़म और उसमें से बहुत कुछ दुआएँ, बहुत सारी दुआएँ जामे हैं। जामे का मतलब ऐसी दुआएँ जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतों, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया एक छोटी सी दुआ है लेकिन जामे है, उसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगी गई। ऐसी हदीस में बहुत सारी दुआएं हैं जिनको जामे दुआएं कहा जाता है कि जिसमें दुनिया की नेमतें भी हैं और आखिरत की भी। ऐसी दुआएं याद करो ताकि दुआ के वक्त आसानी से उसको मांग सको। हमारा हाल यह है कि हमको हुजूर ने दुआएँ तो सिखलाई लेकिन हमने याद नहीं की। दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं तो दो चार दुआओं के बाद आगे गाड़ी चलती नहीं, जबान रुक जाती है, आता ही नहीं। खुद दुआओं का आदि बनो और मिजाज बनाओ मांगने का। खैर, और उसके अलावा भी रोज़ाना 5-10 मिनट अलग से, ये हिजबुल आज़म की दुआएं, उसके अलावा भी अपनी हाजतें, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, पूरी उम्मत मोहम्मदिया की लिए दुआ मांगने की आदत डालो। और हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी सुन्नतों नफलों से फारिग होकर 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, ये तस्बीह फातिमी कहलाती है और सोते वक्त भी इसको पढ़ना है। कुल 24 घंटे में 6 मरतबा, 5 नमाजों के बाद 5 और सोते वक्त। सोने का जब इरादा करो तो सोने का जो तरीक़ा हमें शरीयत ने बताया, भाई सोने के आदाब, आदाब का मतलब क्या, आदाब का मतलब ये उसमें खाने के आदाब, फना के आदाब, शरीयत ने इस काम को अंजाम देने के लिए जो तरतीब हमको बताई है कि क्या दुआएं पढ़नी है, किस तरह करना है, तो आदाब में कोई चीज़ फ़र्ज भी होती है, कोई चीज़ वाजिब भी होती है, कोई चीज़ क्या होती है, मुस्तहब भी होती है। वो पूरे मजमूए को ताबीर करते हैं किस से, आदाब से। आदाब का मतलब ये है उसका बेहतरीन तरीक़ा। आदाबुल अक्ल का मतलब है कि खाने के का वो तरीक़ा जो शरीयत ने हमको बताया है, अब उसमें सब आ जाता है। हाथ पहले धो, दस्तरखान बिछाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, दाहिने हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ, इस तरह गोया ये सब तरतीबंद। खाने के बाद ये दुआ पढ़ो, हाथ धो लो पूरा, या जैसे इस्तिंजे के आदाब, तो इस्तिंजे के आदाब का मतलब ये कि इस्तिंजे के लिए सैयद ने हमको जो तरतीब बतलाई है उसमें दुआएँ भी आ जाती हैं और जो करने की चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। वो सब मजमूए को ताबीर करते हैं कैसे, आदाब से। उन आदाब, अदब का आदमी क्या समझता है, आदाब है यानी मुस्तहब है, नहीं, आदाब में बात चीज़ें वो भी होती हैं जो क्या होती हैं, वाजिब भी होती हैं, शरीयत ने उसको ज़रूरी करार दिया। यहाँ आदाब के लिए इसलिए कहा गया कि वो पूरे मजमूए को उसको ताबीर करते हैं। खैर, तो बहरहाल ये आप रात को जब सोएं तो सोने के जो आदाब हैं, आदाब में से एक अदब यह है कि आदमी बावजू सोए। आपका वजू अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो वजू कर लो, वजू के बाद बिस्तर पर जाओ, बिस्तर पर जब लेटने के लिए जाओ तो अब ये तस्बीह फातिमी पढ़नी है, वो भी तो उस वक्त तो पढ़नी है, तो तस्बीह फातिमी पढ़ने का वक्त आएगा तो आपका नफ्स आपको यूँ कहेगा लेट जाओ और लेटे लेटे पढ़ो, आपका नफ्स आपको सुला देगा, सुलाने के बाद पढ़वाए ना नहीं कहेगा, समझे ना, हाँ ना, लेटे लेटे पढ़ो, और लिटा दिया आप सब पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अभी तो 8-10 मरतबा हुआ नहीं था कि आँख लग गई, रोज़ाना तो देर से लगती थी लेकिन आज जब लेट के पढ़ना शुरू किया तो 8-10 के बाद ही लग गई। यही से तरतीब ही है, शैतान की और नफ्स की एक तरतीब है। तो बारह इसलिए आपको जब दिल में ये ख्याल आवे कि लेटे लेटे पकड़ना, मैं तो बैठ के पढ़ूँ, बैठ के पढ़ने में कितनी देर लगती है, 2 मिनट बाद में, जैसे आप सोने का इरादा करें और फ़ोन की घंटी बजे तो रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, हालांकि आपको मालूम नहीं कि सामने वाला आपका कितना टाइम लेगा, हो सकता है 10 मिनट बात करें, तो आप 10 मिनट का रिस्क तो ले रहे हैं, और वो 10 या 15 मिनट भी हो सकते हैं, और 2 मिनट का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, ये नहीं, इसको पढ़ लो। एक काम किया, दूसरा ये करो कि सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा का अव्वल आखिर याद है तो वो, और चारों कुल बिस्मिल्लाह समेत, ये कुल 7, ये जो है सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और ये 6 और वो 2, गोया 8 चीज़ें हो गई। उसके बाद हाथों पर दम करके सर पर, चेहरे पर, आगे पीछे हाथ फिरा दो। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, और जो आदमी इस तरह करेगा रात भर अल्लाह की हिफाजत में रहता। ये 2 काम किए, अब लेट जाओ। लेटने के लिए तरीका मसनून तरीका, दाएं करवट पर, दाएं रुखसार के नीचे दाएं हाथ रख कर रब दुआ पढ़ लो। बहुत सारी दुआएं हैं, एक छोटी सी दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो वहिया याद है ना, लेकिन रात को पढ़ी नहीं थी। पढ़ने का मसला असल है, याद सबको है, लेकिन पढ़ी कितनों ने अपने दिल से पूछ लो। तो असल यही है कि आदत डालनी है हमें, अपने अंदर अपना मिजाज बनाना है। तो उसके बाद फिर उठो, तो उठते ही पहले आपकी ज़बान पर दुआ होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैही नुशूर, और भी अस्कार जो हैं वो। और फिर इस्तिंजे के लिए जब जाने का इरादा करो, चप्पल पहनो तो वो चप्पल पहले दायां फिर बायां, आप बैतुल खला में जाओ तो उसका भी वही तरीका। हर काम सुन्नत के मुताबिक करोगे तो आपका वो अमल जो है इबादत बन जाएगा। ये तो करने की चीज़ें हुई, बचने की चीज़ों में जैसा कि अभी आपने कहा, बैत के अंदर कहा था कोई गुनाह नहीं करेंगे, हर गुनाह से अपने आप को बचाना है। ख़ास करके 4 गुनाह आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप अपने आप को उनसे बचाने का अहतमाम करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे गुनाहों से बचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक तो है बदनिगाही, आँखों का गलत इस्तेमाल, नामहरम औरतें, बेरीश लड़के जिंदा हैं वो भी, और नामहरम औरतों की तस्वीरें जो बड़े बड़े साइन बोर्ड पर, अखबारात में, इंटरनेट पर, यही मोबाइल ने आजकल मुसीबत खड़ी कर दी है। एक एक आदमी उसी में मशगूल होकर रोज़ाना जो है सैकड़ों मरतबा इस गुनाह का इर्तिकाब करता है। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बदनिगाही की वजह से ताआत का नूर सलब हो जाता है। आदमी जो इबादतें करता है उसकी वजह से कल्ब में जो कैफियत पैदा होनी चाहिए वो इस बदनिगाही की वजह से पैदा होती नहीं। देखो, आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ने पर हदीस में आया कि 1 हर्फ पर 10 नेकियाँ वो मिलेगी, लेकिन उस कुरान पढ़ने पर आपके कल्ब के अंदर जो तब्दीली आती है, ये बदनिगाही उस तब्दीली को क्या कर देगी, रोक देगी, ख़त्म कर देगी। जैसे आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, उस दवाई से जो सेहत और तंदुरुस्ती आनी चाहिए, बदपरहेजी करेंगे तो 1 लाख रुपये की दवाई खाई लेकिन 5 रुपये का बैगन खा लिया, उस 5 रुपये वाले बैगन ने 1 लाख रुपये की दवाई का जो है कबाड़ा कर दिया। हमने इतनी बड़ी इबादत की, इस बंदगाही ने हमारी इबादत का मामला ख़त्म कर दिया। बहुत सोचने की चीज़ है कि हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है कि इतनी मेहनतें करते हैं हम अल्लाह के लिए और फिर उन सारी मेहनतों पर पानी फेर देते हैं। अपनी ख्वाहिशात नफ्स के लिए उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये बदनिगाही जो है उससे अपने आप को बचाओ। दूसरा है बदज़बानी, ज़बान का गलत इस्तेमाल, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गीबत, तोहमत, चुगली, झूठ और बेकार गपशप, ये लायानी बैठ कर के जो टाइम पास के नाम से हम बैठते हैं, इसकी वजह से भी कल्ब के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्मत पैदा हो जाती है, कल्ब एकदम ख़त्म हो जाता है। इससे अपने आप को बचाओ। और तीसरा है बदगुमानी, ऐब जोई, हमारा नफ्स बड़ा चालाक है, वो हमको दूसरों में उलझा देता है। हमको वो क्या दिखा, ये मैं इनको देखूंगा, मेरा दिल क्या कहेगा, इसमें ये खराबी है, ये खराबी है। हर आदमी जब दूसरे को देखता है तो उसमें उसको क्या नज़र आती है, खराबियाँ, उयूब नज़र आते हैं, और अपने ऐब जो हमारी निगाहों के सामने वो हमको दिखते नहीं। ये क्या हुआ कि हमारे नफ्स ने हमको धोखे में ला दिया, हमको दूसरों के ऐबों को देखने में ऐसा मशगूल किया कि हम अपने ऐबों को भूल गए। वो नफ्स जानता है
ये अगर अपने ऐबों की तरफ मुतवज्जे हो गए तो मेरी शामत आ जाएगी, उसको मुजाहदा करना पड़ेगा। और नफ्स मुजाहदा करने के लिए तैयार नहीं हो तो आपको ख्वाहिशात में लगाना चाहता है। इसलिए जो है हमें कोशिश यही करनी चाहिए। बड़ा मुबारक है वो बंदा जो लोगों के ऐबों से आँखें बंद कर ले, अपने ऐबों को देखे, उसको सुधारने की कोशिश। लोगों की तरफ ध्यान दो ही मत। बदगुमानी से भी बचना चाहो तो उसका आसान इलाज यही है, कोई भी हो, आप मस्जिद में भी बैठे हैं, अपनी दरसगाह में भी है, तो अपने काम में कोई आके बैठा, हमारी आदत होती है मस्जिद में कुरान पढ़ो, कोई आके बैठा, अरे भाई तुझे कुरान के दरमियान फुर्सत काहे को मिली, तेरा ध्यान उधर गया काहे को। मगर नहीं, वो हमारा मिजाज बिगड़ा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा सुधारने के। एक टीवी देख रहा हो ना, 10 आदमी आएंगे तो भी वो यूं करके देखेगा, नहीं वो उधर ही उसका ध्यान, और हम कुरान पढ़ रहे हैं और दुबला भी आ जाएगा तो पहले देखेंगे उसका, उसकी शक्ल देखे बगैर कुरान के अंदर नूर नज़र नहीं आता हमको। ये जो है ना, ये हमारी आदतें ख़राब हैं, इसी में बदगुमानियाँ भी होती। खैर, तो बहरहाल ये जो है बदगुमानी से अपने आप को बचाओ। और चौथा जो है हराम लुकमा, हराम कमाया। आप तो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज में पढ़ने के ज़माने में भी कोई हराम गज़ा, गलत किसी का माल ज़बरदस्ती बिला इजाज़त के खा लेना, ये दुरुस्त नहीं है, उसकी वजह से कलबों में बड़ी ज़ुल्मतें आती हैं। बहरहाल कोशिश यही हो कि कोई गुनाह हमसे सरज़द न हो, उसके बावजूद खुदा ना खास्ता हो गया तो फौरन तौबा। देखो कोई भी गुनाह दीदा व दानिश्ता जानबूझ कर तो करना है ही नहीं, लेकिन अगर हमारी गफलत की वजह से और नफ्स के बहकावे में आकर हो जावे तो तौबा में देर मत करिए, फौरन तौबा करके। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ तौबा कबूल हो जाती है, इतना आसान इलाज है, फिर भी वो नफ्स उसको भी करने देता नहीं है, इसलिए उसका अहतमाम हो। बस ये करने बचने की चीज़ें हुई। अब उस पर अमल का आसान तरीका यह है कि अपना माहौल, अपना उठना बैठना, अपनी दोस्ती, अपना जो है ये हल्का या अहबाब, नेक लोग, नेकों के साथ बैठे हुए तो आप नेक बनेंगे, गलत लोगों के साथ बैठेंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है, हर नेकी की जड़ नेक सोहबत और हर बुराई की जड़ बुरी सोहबत। इसलिए बुरी सोहबत, यहाँ तलबा में भी हर किस्म के मौजूद हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उन बुरों के पास मत बैठो, वो ताना देंगे आपको, जो है टॉर्चर करेंगे, लेकिन उसकी परवाह मत करो, आप अपने काम में लगे रहो तो ही आपकी ज़िंदगी ठीक होगी। हमें तो अपनी कामयाबी देखनी है। खैर, तो बहरहाल कोशिश यही हो और कि हमारा माहौल दुरुस्त हो और उसकी वजह से अमल में आसानी हो जाएगी। बस ये हमारा सिलसिला जो है चिश्तिया सिलसिला है, वैसे बैत चारों सिलसिलों में किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर हमारे अकाबिर का चिश्तिया और नक्शबंदिया भी साथ में कुछ थोड़ा मिला हुआ है। बहरहाल ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वाला, अल्लाह तबारक तआला आप हजरात का ये बैत होना कबूल फरमावे, सिलसिले की बरकतों से माला माल फरमावे, अल्लाह ताला अपनी मर्जियात पर चलाए, नामर्जियात से बचाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुकम्मल पैरवी नसीब फरमावे, सिलसिले के तमाम अकाबिर से अल्लाह ताला हकीकी नस्बत व ताल्लुक अता फरमावे, दुनिया में उनके नक्श कदम पर चलाए, आखिरत में उनके साथ हमारा हश्र फरमाए। अपने अपने वक्त पर अल्लाह ताला मुझे आपको सबको दुनिया से ईमान के साथ उठावे। अब ये सारी चीज़ें भाई वो